इब्रानियों के नाम खत 12वां बाब मसीह का नमूना।
बस जबकि गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उतार कर सब्र से इस दौड़ में दौड़ें जो हमारे सामने है, और यीशु को तकते रहें जो ईमान का बानी और कामिल करने वाला है, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके सामने थी रुसवाई को नाचीज जानकर स्लीब को बर्दाश्त किया और खुदा के तख्त की दहनी तरफ जा बैठा। तुम उस पर गौर करो जिसने गुनहगारों की इतनी बड़ी मुखालफत की बर्दाश्त की, ऐसा ना हो कि तुम बेदिल होकर हिम्मत हार दो, क्योंकि तुमने गुनाह से लड़ने में अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तादीब को हकीर न जान और उसकी तंबीह से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद जिसे प्यार करता है उसकी तादीब करता है, और वो हर एक उस बेटे को कोड़े मारता है जिसे कबूल कर लेता है।
तंबी में सबर करते रहो, खुदा तुम से फर्जंदों की मानिंद सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? पस अगर तुम उस तंबी से अलैदा हो जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हराम जादे हो, फर्जंद नहीं। इलावा इसके, जब हमारे जस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनका अदब किया करते थे, तो क्या हम उससे ज्यादा रूहों के बाप के ताबे ना रहें ताकि जिंदा रहें? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते जैसा उन्हें मुनासिब मालूम होता था हमें तंबी करते थे, मगर ये हमारी बेहतरी के लिए करता है ताकि हम उसकी पाकीजगी में शरीक हो जाएं। और कोई तंबी बिलफेल खुशी का बाइस नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है, लेकिन वो आखिर में उन्हें जो उससे तरबियत पाते हैं चैन के साथ सदाकत का फल बख्शती है। इस वास्ते ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को सीधा करो और अपने पांव के लिए हमवार रास्ते बनाओ, ताकि कोई लंगड़ा भटक ना जाए बल्कि शिफा पाए। सब के साथ सुलह रखो और उस पाकीजगी की तकलीद करो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा, और गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रहे। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ सब्ज होकर रुकावट पैदा करे और उससे बहुत नापाक हो जाएं, और ना कोई हरामकार हो या ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक खुराक के वास्ते अपने पहलौठे होने का हक बेच दिया, क्योंकि तुम जानते हो कि बाद अजां जब बरकत का वारिस होना चाहा तो वो रद्द किया गया, चुनांचे उसे नियत की तब्दीली का मौका ना मिला, अगरचे उसने उसे आंसू बहा बहा कर बहुत ढूंढा, क्योंकि तुम उस पहाड़ तक नहीं आए जो छुआ जा सके, ना उसकी जलती आग और काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे के शोर और कलाम की आवाज के पास, जिसे सुनने वालों ने सुनकर दरखास्त की कि ये कलाम फिर हमसे ना किया जाए, क्योंकि वो उस हुक्म की बर्दाश्त ना कर सके जो उनसे कहा गया था कि अगर कोई हैवान भी पहाड़ को छुए तो वो संसार किया जाए, और वो नजारा ऐसा हैबतनाक था कि मूसा ने कहा कि मैं डरता और थरथराता हूं।
लेकिन तुम्हें कोहे सेहून पर और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम और लाखों फरिश्तों की महफिल और उन पहलोठों की जमात में जिनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, और उस खुदा के पास जो सबका मुनसिफ है और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों के पास, और अहदे जदीद के दरमियानी यसू और उस खून पाशी के पास आए हो जो हाबील के खून से बेहतर बातें बोलती है। खबरदार, बोलने वाले का इनकार न करो, क्योंकि जिन्होंने जमीन पर बोलने वाले का इनकार किया जबकि वो ना बच सके, तो हम क्यों कर बच निकलेंगे? अगर उससे मुंह मोड़ें जो आसमान पर से हमसे बोलता है, जिसकी आवाज ने उस वक्त तो जमीन को हिला दिया मगर अब यह कहकर ऐलान किया गया है कि एक बार फिर मैं फकत जमीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूंगा, बस एक बार फिर कहने से ये मुराद है कि जो चीजें हिलाई जाती हैं वो बनी हुई चीजों की मानंद टलने वाली हैं, ताकि जो चीजें टलने वाली नहीं वो कायम रहें। बस हम ऐसी बादशाही को पाकर जो टलने की नहीं उस फजल को पकड़े रहें जिसके जरिए से खुदा की इबादत पसंदीदा तौर पर खुदा तरसी और अदब के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा भस्म कर देने वाली आग है।